ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಮ ಜಯ ಗೋಪೀ ಜಾನವಲ್ಲವ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀ ಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗೌರಾಂಗ ಗಂಧಕಧಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲಭದ್ರ ಸೂದ್ರಜಿ ಕಿ ಜಯ ಜಯ ನಿತ್ಯ ಪರಮ ಪರಿಬ್ಬಿಜಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದೇಶಿ ಭಕ್ತಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಲಾ ಪರಿಷ್ಣು ಮುಸ್ಮಾತ್ ಪರಮಂಸ ಪರಿಬ್ಬಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ ಜಯ ನಮಾಚಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಜಯ ಸಮಪತ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ನಿತಾಯ ಗೌರ್ ವಿಮಾನಂದೇ ಹರಿ ಹರಿ ಗೌರ್ ನಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಮಪಿ ಶುಚಿಪುತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪಂ ರೂಪಂ ತಸ್ಯಾಗ್ರಜಂ ಮರುಪರಿ ಮಾಧುರಿಂ ಗೋಷ್ಠವಾಟಿಂ ರಾಧಾಕುಂಡ ಗಿರಿವರ ಮಹೋ ರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವಾಸಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಸ್ಯ ಪತಿತ ಕೃಪಯಾಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ತಮನತೋಸ್ಮಿ ಬಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೇವ ಚ ಪೈತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಪರಾಧಲಕ್ಷ್ಯೈ ಕ್ಷಿಪ್ರಾದಿ ಕಮಾದಿ ತರಂಗ ಮಧ್ಯೆ ಕೃಪಾಮಯೀತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನೇ ಬೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಬೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಆನಂದಲೀಲಾಮಯ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಹೇಮಾವತಿಭವಿಸುಂದರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಮಹಾಪ್ರೇಮರಸಪ್ರದಾಯ ಚೈತನ್ಯಚಂದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಚೈತನ್ಯಚಂದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಸಾಖ ನಿವಿದಸ್ತನ್ನಭಾವಜೀತುರುಚಿಲ್ಲಾಕೃಷ್ಟ ಸಾರಸ್ತಿಯಂ ಬೇತುನತು ಕೃಪ್ಯಂಗಸ್ತತ್ವದೀಪಂ ಪುರಾಣಂ ತಮಖುಲ ಬ್ರಿಜಿಂಗ್ ಬಶಸೂರುನತೋಯಸ್ಮಿ ಭವೇ ಭವೇ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿ ಪಾದಯಸ್ತವ ಜಾಯತೆ ತಥಾ ಕುರುಷ ದೇವೇಶ ನಾಥಸ್ತನಚಿತಾ ಪ್ರಭೋ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಜಯಶ್ವ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಾಮಂ ದುಃಖ ಸಮನಸ್ತು ತಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿ ಪರಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸ ತತೋ ಜಯ ಮುದೀರಯೇತ್ नास्तप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद छह अध्याय श्लोक नंबर दो। रथितरस्य आप्रजस्य भार्यायां तन्नवे आर्थितं अंगिरा जनयम आस ब्रह्म वचर्षिनः सुतान् रथितरस्य प्रजस्य भार्यां तन्तवे आर्थितं अंगिरा जनयामास ब्रह्म वर्चसिनासुतान् रोथितरैश्च प्रजैश्च भार्यां तन्तवे अर्थिवार्थितम् अंगिरा जनयामास ब्रह्म वर्चसिनासुतान् रोथितरैश्च प्रजैश्च भार्यां तन्तवे अर्थितम् अंगिरा जनयामास ब्रह्म वर्चसिनासुतान्। बोलो
प्रजस्य
रथितर की अप्रजस्य निसंतान भार्यायाम अपनी पत्नी के तंतवे संतान वृद्धि के लिए अर्थित प्रार्थना किए जाने पर अंगिराम अंगिरा ऋषि ने जनयाम आसम उत्पन्न किया ब्रह्मवर्चसेन ब्राह्मण गुणों से युक्त सुतान पुत्र को। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। रहित और निसंतान था, अतएव उसने अंगिरा ऋषि से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना के फलस्वरूप अंगिरा ने रथितर की पत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कराए। वो सारे पुत्र ब्राह्मण तेज से संपन्न थे। तात्पर्य, वैदिक युग में कभी कभी निम्न कुल वाले व्यक्ति की पत्नी से अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए किसी उच्च व्यक्ति को बुलाया जाता था। ऐसी स्थिति में स्त्री की तुलना खेत से की जाती है। खेत वाला व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अन्न उपजाने का काम सौंप सकता है, किंतु उस खेत से जो अन्न उपज जाता है वह खेत का स्वामी होता है। इसी प्रकार स्त्री को कभी कभी अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से गर्भधारण करना होता है, किंतु इस तरह से उत्पन्न पुत्र उसके पति के पुत्र कहलाते थे। यह पुत्र क्षेत्र जात कहलाते थे। चूंकि रथितर को कोई पुत्र न था, अतएव उसने इस विधि का लाभ उठाए। इसका आगे का श्लोक है, एक नंबर। श्री शुक उवाच विरूप केतुमाचंभुर अम्बरीश सुताश्रय विरूपात पिशत अश्व अभूत तत्पुत्रस्त रथितर। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, अम्बरीश के तीन पुत्र हुए थे, विरूप केतुमान और शंभु। विरूप के पुत्र पृषदस्य और उसका पुत्र रथितर। क्या हो जाता है, पुत्रों का पुत्रों का पुत्रों का पुत्र पुपोत्र हो जाता है। ते श्रीमद्भागवतम किस प्रकार ग्रंथ है, भक्ति विषय। इसमें ये सब जो वार्तालाप आता है ये क्यों आता है, क्योंकि ये ईशो कथा के द्वारा संबंध है। साधारणतः अगर हम लोग जनसमाज में इस प्रकार वार्तालाप करें तो लोग हम लोग को हेय कहेगा, ये तुम क्या बात कर रहे हो। श्रीमद् भागवत में ऐसा कह रहे हैं, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानोपशनमूतयो मन्यन्तर ईशानुकथा निराधो मुक्तिराश्रय। निरोधो मुक्तिराश्रय मन्यन्तर और ईशानुकथा, मनो इत्यादि का वंशावली का जो चरितावली है उस चरितावली चल रहा है। बीच बीच में एक महान राजा व भक्त का वर्णन आता है, जिसके द्वारा इस कथा में अमृत वर्षण होने लगता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो अम्बरीश महाराज का पुत्र हुआ तीन, विरूप केतुमान और शंभु। विरूप का पुत्र का नाम है पृषदस्य, उनका पुत्र का नाम है रथितर। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारी जगन्नाथ बलभद्र सूर्य। उनका पुत्र का नाम है रथितर। रथितर शादी किया क्षत्रिय समाज में। वास्तव में शादी विवाह जो है अपना समाज में करना अच्छा रहता है, वो सबसे बेहतर रहता है। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, ये कोई भी कुल में उत्पन्न क्यों ना हो, अभी जब दीक्षा लिया है तो वैष्णव हो गया, और हम भी कोई सा कुल में क्यों ना हो हम भी वैष्णव है तो शादी हुआ जा सकता है। वास्तव में भक्तिनाथ ठाकुर इसका विरोध किया है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्णा शंकर कहते हैं, स्वाभाविक भाव में यद्यपि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति का ब्राह्मण गुलाम बोली वर्तमान में नहीं है, फिर भी कुल का कुछ धर्म मर्यादा अवश्य होता है, आचरण में बहुत सारे अंतर आ जाता है, और यही आचरण के द्वारा जब वही व्यक्ति जब किसी निम्न कुल का लड़की से शादी करता है तो स्वाभाविक भाव में पोती का धर्म प्राप्त होने के नाते पोती का गोत्र कहलाता है, उसमें क्या हो जाता है, निम्न गोत्र से उच्च गोत्र पदवी प्राप्त होता है, जो सही है। लेकिन अगर निम्न कुल का उच्च कुल का भी ब्राह्मण का लड़की निम्न कुल जातो कोई व्यक्ति से शादी करता है तो क्या होता है, उसका कुल का गौरव नीचे चला जाता है, क्योंकि पोती का गोत्र जब प्राप्त होता है तब ये परिस्थितियां उत्पन्न होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो संतान उत्पन्न होगा उसमें अनुलोम और प्रतिलोम इस प्रकार दोनों का संतान का नाम दिया जाता है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्षत्रिय था, और क्षत्रिय होने के नाते उन्हें कोई क्षत्रियो को नहीं बुलाया, राजा थे उन्होंने कोई क्षत्रिय अच्छा क्षत्रिय को बुला करके अपना पत्नी से संतान उत्पन्न करा सकते थे, लेकिन इन्होंने इस प्रकार ना कर किसी ब्राह्मण को बुलाया, क्योंकि उस जमाना में इस प्रकार विधि था, तो इस विधि का उन्होंने लाभ उठा करके उन्होंने उस ब्राह्मण को बुला करके अपना पत्नी से संतान उत्पन्न कराए, जिसको क्षेत्र जो संतान कहते हैं। अभी वर्तमान समाज में जिस प्रकार ब्लड बैंक है, उस प्रकार बीरिजो बैंक है, जब कोई पुरुष का बीरिजो उसी प्रकार नहीं होता है तो उस बैंक से जाकर के बीरिजो खरीद कर सकते हैं, और अपना पत्नी में उस बीरिजो को डाल करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ये सुविधा पाश्चात्य जगत में अभी शुरुआत हो चुका है। एक व्यक्ति ने 600 बाप का पुत्र है, 600 लड़का का, 600 लड़का का बाप है, मतलब इतना शुक्राणु डोनेस्ट किया जो पृथ्वी का हर कोना में उनका संतान है। ये पाश्चात्य जगत में है, इंडिया में शायद कल्चर अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन एक साउथ इंडिया में एक स्टोरी आया था जिसमें उनका पुत्र किसी एक्सीडेंट में मरने वाला था, तो उनका बीरिजो को संग्रह करके रख लिया गया था, और रखने के बाद उनका वंशावली वृद्धि करने के लिए उनका स्त्री में इसको संचार करना चाहा, तो बाद में कोर्ट में फैसला देके इसको यस कहा, मगर उसका वंशावली चलते रहे। तो इसका आजकल का जो क्या बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति, इस पद्धति के द्वारा व्यक्ति बहुत कुछ कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, इससे क्या होता है, उस व्यक्ति का जो स्वभाव है उस स्वभाव का अनुरूप संतान उत्पन्न होगा। पुरा काल में ब्राह्मण लोग अपना द्वादश गुण विशिष्ट होते थे, और द्वादश गुण विशिष्ट होने के नाते उसका कुछ सभ्यता व सामाजिक व्यवस्था कुछ अच्छी तरह रहता था, इसलिए राजा लोग क्या करते थे, कुछ ब्राह्मण को ही बुलाता था जो विशिष्ट ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं रास्ता घाट में जो भी कुछ मिल गया चलो आ जाओ, नहीं, कोई विशिष्ट ब्राह्मण को बुला करके वो लोग इस प्रकार कार्य करते थे। लेकिन इस कलियुग होने के नाते इनका बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस समय जो भी ब्राह्मण आते थे व ऋषि लोग आते थे वो काम भाव से कोई नहीं आता था, ये चलो भाई आज मिल गया अच्छा पत्नी ठीक है, इस भावना से कोई नहीं आता था, उनका यह भावना था इसका वंश का वृद्धि हो और उसी प्रकार संतान उत्पन्न हो। आजकल का जो समाज है, आजकल का समाज में क्या है, सब समय काम भाव युक्त समाज है, इसलिए आजकल इसको बंद कर दिया गया है। महाप्रभु जब चांदका जी से मिला था तो उन्होंने कहा था अश्वमेधो गवालंभ देवरण सतोत्पत्ति करो चतुर्थ पंच विवर्जित, ऐसा कुछ श्लोक है। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ और मांस के द्वारा पितृतर्पण और देवर के द्वारा संतान उत्पन्न, ये पांच ये चार कार्य जो है और एक कुछ है पंच कार्य विवर्जन में जो क्या संन्यास, हाँ कलिकाल में संन्यास, ये पांच जो है ये वर्जन कहा गया है। क्योंकि काल का प्रभाव होने के नाते इसका अस्तित्व इस प्रकार हो गया, कोई व्यक्ति इनका सही तरीके से पालन नहीं करेगा। इसलिए महाप्रभु ने चांद का जी को कहा जी कलयुग में सब ये है, आप लोग जो कार्य कर रहे सही नहीं है। जब उन्होंने प्रश्न उठाया था ये ब्राह्मण लोग जो गोमेद यज्ञ करता है तो मुसलमान का गोहत्या करने से पाप क्या होता है, तो इसका उत्तर महाप्रभु ने कहा। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ जो सभ्यता है व कुछ कुछ जैसे शास्त्रोक्त जो वाणी है, इस वाणी को गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। इसलिए यहां पर क्या कहा गया है, फलस्वरूप अंगिरा ने रथितर को पत्नी का गर्भ से पुत्र उत्पन्न कराया और सारे पुत्र ब्राह्मण तेज से संपन्न थे, सब का सब ब्राह्मण तेज से संपन्न था। अभी अगर कोई उकील का बीर्ज ले, कोई डॉक्टर का बीर्ज ले, कोई बिजनेसमैन का बीर्ज लेके अपना पत्नी में अगर उस प्रकार संतान उत्पन्न करना चाहा तो क्या होगा, ऐसा कोई उनका बीर्ज से डॉक्टर बच्चा पैदा होगा क्या, नहीं होगा। उकील का बीर्ज से उकील बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एक पदवी है लेकिन उसका जो गुणावली है वो गुणावली युक्त ही संतान उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग महाभारत में देखते हैं विचित्र वीर्य का जो पत्नियां थी अंबिका और अंबालिका, अंबा तो अपना आग में जल के मर गया, शिक्षा मृत्यु वरण किया प्रतिशोध लेने की इच्छा से, जो बाद में शिखंडी रूप में आए उनका जन्म हुआ। तो जब विचित्रवीर्य मर गया तब महारानी सत्यवती ने पुत्र भीष्मक से कहा कि तुम्हें अभी इनका इनके गर्भ से संतान उत्पन्न करना चाहिए जिससे हस्तिनापुर का सिंहासन शून्य ना हो जाए। उन्होंने कहा मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत धारण किया और पिताजी से वचन भी दिया है, इसलिए कार्य मैं नहीं कर सकता हूं। तब उन्होंने बोला ठीक है, तो व्यासदेव जी को बुलाया जाए। व्यासदेव जी आए और आकर के व्यासदेव ब्रह्म थे संपन्न थे। जब अंबा से मिलने के लिए गया तो उसका इस प्रकार ब्रह्मतेज था जो उसको देख नहीं पाया और उसको आंख बंद कर लिया। आंख बंद करके आते उनका जो उन्होंने कहा ये तुम्हारा जो संतान होगा ये अंधा होगा क्योंकि तुमने हमें देख नहीं पाया, समय में तो संतान उत्पन्न हुआ और अंधा हुआ नाम हुआ धृतराष्ट्र। सत्यवती खुशी नहीं हुआ, दोबारा बुलाया। अभी अंबालिका के पास गया, अंबालिका उसका तेज देखकर उनका शरीर पांडु वर्ण हो गया, तो उनका संतान भी पांडु वर्ण पैदा हुआ। अब इससे जब खुश नहीं हुआ तो अभी दोनों पत्नी जो बोल वाला अभी हम लोग उनके पास जा नहीं सकते, क्या तेज है, तो एक दासी उनको बोला, वो जाके दासी को भेज दिया और दासी ने बहुत अच्छी तरीके से उनका सेवा किया व्यासदेव का, और व्यासदेव का आशीर्वाद से उनका पुत्र विदुर हुआ। व्यक्ति एक ही है, तीनों संतान तीन प्रकार का है, एक संतान लोलुप लोभी सामाजिक विचार न करके अपना स्वार्थ देखते हैं, लेकिन ब्राह्मण होने का नाते पराशर मुनि का पुत्र है व्यासदेव, ब्राह्मण है होने का नाते इन्होंने क्या करते कहते थे, ये आपका जो वाक्य है तो हमारा कान में आता है, कृष्ण को कह रहे थे, लेकिन हृदय में स्थान नहीं पा रहा है, क्योंकि हम पुत्र स्नेह से मुक्त तो नहीं हूं। तो हम देखते हैं मां और बाप जिस स्वभावगत तो होगा संतान उसी स्वभावगत तो होता है। यद्यपि यहां पिताजी का उत्कृष्ट बताया गया है, लेकिन इन्होंने इस पिताजी का उस प्रकार सत्कार ही नहीं किया। अगर अंबानी उसी प्रकार सत्कार करते थे तो उनका पुत्र ही उसी प्रकार होता जैसे व्यास देवी जैसे। हम लोग देखा विदुर का, विदुर नित्य समाज में प्रसिद्ध है। विदुर ने किस प्रकार कहते हैं, किसी से अपेक्षा नहीं है, फ्रंट टू फ्रंट बात करते हैं, सीधा कहते हैं आपका पुत्र दुर्योधन है जब तक हस्तिनापुर में रहेगा तब तक हस्तिनापुर सुखी नहीं हो सकता है। पोस्टोवाइक को ब्राह्मण कहेगा, दूसरा कोई नहीं कह सकते हैं। तो ब्राह्मण किसी से डरता नहीं है। दासी ने अच्छी तरीके से व्यासदेव को सेवा किया, जिसका फलस्वरूप ब्राह्मण कुल का उसी प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ, फ्रंट टू फ्रंट डिक्लेयर। ये विचारियो यहां देखते हैं, ये सारे जो पुत्र उत्पन्न हुए उस पुत्र का सब ब्रह्म तेज से संपन्न थे, क्योंकि पोती क्या अनुमोदन था, ऐसा नहीं छिप के जाकर संतान पैदा किया, ऐसा तो नहीं है। पोती ने अनुमोदन दिया, जाओ इससे तुम संतान उत्पन्न करो, पोती ने स्वीकार किया। तो अनुमोदन और शिकारी इसमें कोई कपट नहीं था। आज जहां पर एक कपट आश्रय ग्रहण करता है उससे संतानों को कपटी होगा, इसलिए इनका जितना सारे संतान हुआ सब ब्रह्म तेज से संपन्न थे। सम सत्य दया क्षमा ह्री विनय धी, ये सब ब्रह्म गुण है और ये लोग यही गुण से संपन्न थे। ये शास्त्र क्या कहते हैं, विप्रादि सड़गुण जुतदार विंद पदार विंद विमुखात सपचंग वरिष्ठम मन्ने तदर्पितो मनोवचन हितार्थ प्राणं पुनाति न तो स कुल भूरिमान। द्वादश गुण विशिष्ट अगर ब्राह्मण भक्त तो नहीं है, वैष्णव नहीं है, तो कुछ काम का नहीं है। पर अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात, नाभ शब्द का नाभि, अरविंद शब्द का लोटस, जिनका नाभि कमल से, जिसका नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है अरविंद नाभ, उनका पदारविंद विष्णु, विष्णु से नाभि कमल हुआ, उसको आप जो चरण पदारविंद विमुखा, जो उसका चरण पूजा नहीं करता है, मतलब भगवान का अर्चन जो व्यक्ति नहीं करता है, वो ब्राह्मण है क्यों ना हो जाए, वो घृण्य है, उससे चंडाल श्रेष्ठ, क्योंकि चंडाल कुलोत्पन्न व्यक्ति अपना कुल को उद्धार कर सकता है, लेकिन द्वादश गुण विशिष्ट ब्राह्मण एक कार्य नहीं कर सकता है। ये कहा है, इसलिए कोलिकाल जो है, कोलिकाल क्या है, कोली युग में ये सब कार्य नहीं चलेगा, इसको उच्छृंखल बताया गया है। आजकल सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार है कि कोई एक से दूसरा संतान चाहते नहीं है, गांव का बात छोड़ दो टाउन का बात है, क्योंकि किसी का पास भी समय नहीं है, न मां का पास समय है न बाप का पास समय है, सब बिजी है, सांसारिक कार्यों निर्वाह कर नहीं पाता है, कि रोज का रोज जो रोजमर्रा जो वस्तु है इस वस्तु का इतना कीमत बढ़ रहा है कि दोनों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। ये पहला जमाने में इस प्रकार नहीं था, आराम से सबका संसार चलते थे। आजकल जो भोग का वस्तु है वो ज्यादा हो गया, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, केबल चाहिए, मोबाइल चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए दोनों को दौड़ना पड़ता है। पहला जमाने में इस पर कुछ भी नहीं था, सब शांति से जीवन यापन, खेती है जाओ, फ्रिज में चार दिन सब्जी सड़ाने का कोई जरूरत नहीं है, खेती से उठाओ ताजा बनाओ। इसलिए उस समय के व्यक्ति का स्वभाव उग्र नहीं था। और अभी का व्यक्ति का स्वभाव उग्र क्यों है, कि जितना सारे हम भोजन कर रहे हैं सब केमिकल ही खा रहे हैं, और केमिकल उग्र होता है, इसलिए स्वभाव हमारा उग्र बना देते हैं। हम सोचते हैं हम सात्विक भोजन कर रहे हैं, सात्विक नहीं होता है वो, उसमें भी केमिकल डाल देते हैं। इसलिए इतना सब करने खाने के बावजूद भी हम लोग का स्वभाव से उग्र हो जाता है। थोड़ा प्रसाद का महत्व तो बोल के समय समय पर हम लोग उसका काबू पा लेते हैं, हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए, ये भगवान का फारिंग का थोड़ा महत्व तो हो जाता है। निजाज देखो सब उग्र स्वभाव का है, यही उग्र स्वभाव होने के नाते कलयुग में कहा गया है ये सब बांध कर दिया गया है। यही इनका रोहितर ने अपना पत्नी का गर्भ से ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति को उत्पन्न कराया, जिसे सब का सब ब्राह्मण बन गया। इस प्रकार शास्त्र श्रीमद् भागवतम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, हम लोग इसको सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, सुनी ले चैतन्य कथा भक्ति लिब्य है। महाप्रभु का कथा अगर सुना जाए तो भक्ति लाभ होता है। सुनी ले चैतन्य कथा भक्ति लिब्य है। वर्तमान समय का राजा कौन है, महाप्रभु राजा है। तो राजा का अगर गुणगान करेंगे तो प्रजा स्वाभाविक सुखी रहेगा। अभी हम लोग का समय क्या है, राजा का गुणगान, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल पढ़ना चाहिए सदा सर्वदा। श्रीमद् भागवत क्या कहते हैं, सिनतां सकथां कृष्ण पुण्य सवन कीर्तनम हृदय अंतस्तवर्धाने विधुनोति स्वीत सताम। ये जो कृष्ण कथा, अगर ये जो कथा को हम लोग, इस कथा को बहुत प्रकार से लिया जा सकता है। अगर सुनिले कृष्ण का, सुनिले चैतन्य कथा व कृष्ण कथा सकथान, अगर भागवत को भागवत कथारूप में लिया जाए तो हमें भागवत भक्ति लाभ होगा। अगर इसका गलत विचार से लिया जा रहा है, क्या राजा है वो अपना पत्नी को दूसरा पुरुष को छोड़ दिया, ये कैसा है, भागवत में इसे विचार लिखा गया है, तो क्या होगा, हमारा दुष्ट बुद्धि होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम को जो रास पंचाध्याय का श्लोक में लिखते हैं, क्या कहते हैं, जो व्यक्ति इस कृष्ण और गोपिका गण का जो विलास लीला है इनको धीर व्यक्ति से श्रवण करेगा, संयत धीर श्रवण करे व्यक्ति, अगर कामुक भी क्यों ना हो तो हृदय काम उसको नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार श्रवण करना चाहिए जिसे भागवत कहते हैं। हमें इस विचारधारा से इसको श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवत स्वयं श्री कृष्ण है। भगवान का विग्रह का पूजन करना, श्रीमद् भागवत का ऊपर चरंती तुलसी और पुष्प देना, चंदन तुलसी पुष्प देना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। विग्रह पूजा करना संभव नहीं, तो श्रीमद् भागवत को ही अगर पूजा किया जाए रोज, तो श्रीमद् भागवत का पूजन क्या है, श्रीमद भागवत पुष्पो देने के बाद उनको खोल के रोज एक श्लोक पढ़ना, यही श्रीमद भागवत का पूजा है। रोज एक श्लोक पढ़ो, पूजा हो गया भागवतम का। ठाकुर जी की पूजा करोगे तो भोग लगाना पड़ेगा, यदि पूजा संपूर्ण नहीं नहीं होगा। भागवत कैसा नहीं, इसका श्लोक पढ़ो तो पूजा हो गया, कृष्ण पूजा हो गया। ऐसा भागवत है, अद्भुत वीर्यशाली। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावा श्रीमूर्ति श्रद्धा श्रवण सकल साधन श्रेष्ठ पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माय पांचेर अल्प संग। अल्प संग, ज्यादा संग करने का जरूरी नहीं है। दिन भर में दो चार मिनट अगर इसका संग किया जाए तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा। किसका? जो अपराधी है। अपराधी व्यक्ति भी अगर श्रीमद भागवत पाठ करते हैं, अपराध बहिर्भूत होकर के, अपराध ना करके, ये जो हो गया सो हो गया आज से नहीं, तो उसका भी अपराध खाय होकर के शोको मोह भया पया भक्ति उत्पद्यते पुंस, उस पुरुष में भक्ति उत्पन्न होगा, परम पुरुष में, वह उस पुरुष भक्ति लाभ करेगा जो श्रीमद भागवतम का अध्ययन करेगा। ये विचार इस प्रकार विचारधारा से युक्त होकर के भागवते अचिंत ईश्वर बुद्धि जार से तो जाने भागवतेर सार। जिसका श्रीमद भागवत में अचिंत बुद्धि, अचिंत ईश्वर बुद्धि है, जैसा भगवान है वही भागवत जान सकता है, नहीं तो क्या करेगा? ये सब श्लोक देखेगा, ये श्लोक देखेगा, ये श्लोक देखेगा। आज दुनिया भर का श्लोक देख के, आजकल तो इंटरनेट आ गया, दबाओ बटन, किस श्लोक का क्या है पूरा इकट्ठा करके आके बोल देना। इसको क्या बोलता है? रटना। जैसे किसी तोता पाखी को, पैरट को कुछ सिखाया जाता है, ये जाके बाजार में कुछ कहो, और वो बाजार में जाके कह देते हैं, यहाँ वहां वहां होकर पब्लिक इकट्ठा हो जाता है, देखो तुम्हारा पैरट सब कुछ बोलेगा, वो बोलना शुरू कर देता है, जितना सिखाया उतना ही बोलेगा। इसमें बुद्धि का विकास नहीं होगा। भक्ति लाभ तो बहुत मुश्किल है, बुद्धि का विकास भी नहीं होगा। जो मन ब्रेन का जो संरक्षण करने का क्षमता है ना, वो भी नहीं रहेगा, ब्रेन भी फालतू हो जाएगा। जैसे आजकल है ना पीटी पीटी, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर। किसी बच्चा को मैथ्स करना नहीं आता है, कोई बात, हम लोग का समय क्या है, हम लोग मुंह में मैथ्स करेंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब कर लेंगे। नहीं, आज 10 क्लास 12 क्लास हायर क्लास का बच्चा को पूछो, वो सीधा कैलकुलेटर दबाएगा तभी आपको बोल पाएगा, कि उसका बुद्धि उस पर विकास ही नहीं हुआ। तो बुद्धि का विकास करने के लिए अध्ययन करना, मनन करना जरूरी है, और साथ में क्या करना पड़ेगा? अचिंत ईश्वर बुद्धि भागवत में रखना पड़ेगा। नहीं तो बोलेगा हम दुनिया भर कोटेशन लेकर तो हम बोल सकते हैं, श्रुति मधुर हो सकता है, लेकिन श्रोता और वक्ता दोनों में से किसी का फायदा होने वाला नहीं है, क्यों तो रट रहे हैं ना। रूपा जी भागवत का तात्पर्य लिखा, क्या उन्होंने सो क्या बोलते हैं रखा था कंप्यूटर रख के सो तात्पर्य लिखा था, जो अनुभव है उसी को उन्होंने व्याख्या किया, उसी को कहा। ये सुधु गोस्वामी भागवत बोल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा सोनकाद ऋषिबिंद को, मैंने सुखदेव गोस्वामी से जिस प्रकार सुना था, और सुनने का बाद जितना मैं धारण कर सका, जितना हमें समझ में आया उतना ही मैं कह रहा हूं। और सुखदेव गोस्वामी सुधु गोस्वामी आशीर्वाद दिया था, यही जो सूत सामने बैठा हुआ है, इन्होंने नैमिषारण्य भागवत का सत्य करेगा। इसको बोलता है गुरु शिष्य परंपरा आशीर्वाद। तो कभी भी भागवत अगर हमको समझना है, भागवत को समझने के बुद्धि से समझने जाएगा तो समझ नहीं सकते हैं। क्या बुद्धि है होना चाहिए, रोज हमें भागवत का अंग्री सेवा करना है, बस समझ पाए चाहे ना पाए, एवरीडे श्रद्धापूर्वक श्रीमद भागवतम को पढ़ने का, भागवत ही बुद्धि देगा हमें समझने के लिए। नहीं तो इसे क्यों कहेगा, भक्तांग भागवतांग गाज्य, भक्ति के द्वारा भागवत समझा जा सकता है, न चो बुद्धया न चो टिकया, पांडित्य के द्वारा भी नहीं और टीका करके टीका पढ़ने से भी नहीं। यही भागवत के वर्णन, इसलिए ये सब कथा कौन कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परमहंस, एक परमहंस कह रहे हैं जे राजा ने एक दूसरा ब्राह्मण को बुलाया करके अपना पत्नी से बच्चा पैदा कराया, एक परमहंस कह रहे हैं। अगर हम इसे कहे तो क्या बोला, क्या इसका थर्ड क्लास व्यक्ति है, देखना इसका अकेले भी नहीं है, सीधा थूकेगा, ये संतान नहीं हुआ तो क्या हो गया, तुम दूसरा को ला करके अपना पत्नी को दिया। एक परमहंस कह रहे हैं निष्किंचल कुले अवधूत कुल चुड़ामणि, कह रहे हैं जो अम्बरीश साधारण व्यक्ति नहीं है, अभी उसका स्टोरी हम लोग पढ़ा सुना, उनका वंशावली में इस प्रकार कार्य हो रहा है, बराबर ना, उनका वंशावली में वंश रक्षा करने के लिए ऐसा कार्य हो रहा है, अनुमोदन कर रहा है सब, यह होता है भागवत। इसी दृष्टिकोण से, भक्ति का दृष्टिकोण से भागवत को स्वीकार करना चाहिए, दूसरा दृष्टिकोण कोई भागवत में नहीं अपनाना चाहिए। सही मन्यंतरा ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय श्रीमद भागवत में दशमे दशम तत्त्वं वर्णितव्य है सुंदर, दशम स्कंध में दशम तत्व आश्रय विग्रह और विषय विग्रह का कथा दशम स्कंध में वर्णन किया गया है, कृष्ण को मूल केंद्र बिंदु रख करके श्रीमद भागवतों का वर्णन चल रहा है। चलो हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भागवत मंथराज की जय, निताय गौर प्रमानंदे।